रात को आहान से मिलने के बाद चाहत काफी बेचैन हो गई थी। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई थी। रात को देर से सोने की वजह से उसकी नींद भी देर से ही खुली थी। कोई जॉब नहीं होने की वजह से चाहत को जल्दी उठने की टेंशन नहीं थी। चाहत सुबह उठी, तब तक सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। वो पूरी रात आहान का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड अपने हाथ में लेकर सोई रही। सुबह उठकर उसने विजिटिंग कार्ड अपने हाथ में देखा तो उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई। आई होप मुझे इस विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत ना पड़े आहान ओबेरॉय। तुम जिस तरह से मेरे ऊपर हक जमाते हो, मुझे तुमसे डर लगने लगता है। तुम बहुत हैंडसम हो और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग। मेरे जैसे लोगों की वहाँ ना तो कोई जगह है और ना ही कोई रिस्पेक्ट होगी, सो इट वुड बी बेटर कि हम एक दूसरे से दूर रहें। चाहत ने विजिटिंग कार्ड की तरफ देखकर कहा और फिर उठकर उसे एक ड्रॉअर में रख दिया। चाहत दूसरी तरफ पलटी ही थी कि उसकी नानी पार्वती उसके पास आईं और कहा, आज तुमने उठने में काफ़ी देर लगा दी, पर कोई बात नहीं, कभी कभार आराम भी कर लेना चाहिए। मैं बस तुम्हें ये कहने के लिए आई थी कि तुम्हारी दोस्त श्रद्धा घर पर आई हुई है और तुम्हारी माँ के साथ किचन में लगी है। अपनी बात कहकर पार्वती जी चली गईं। श्रद्धा के आने की बात सुनकर चाहत के फेस पर स्माइल आ गई। वो उसकी इकलौती फ्रेंड थी, ऊपर से उसकी और उसकी मॉम की काफ़ी बनती भी थी। जब भी श्रद्धा आती थी तब निशा काफ़ी खुश हो जाती थी और उसके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी। उन्हें कंपनी देने के लिए चाहत भी फ्रेश होकर किचन में चली गई। किचन के बाहर से ही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चाहत ने किचन में कदम रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, राजमा चावल बनाए जा रहे हैं और अकेले अकेले खाने की तैयारी भी चल रही है। हाँ, ऑफ कोर्स, किचन में खाना बनाने और सीखने के लिए जल्दी उठना पड़ता है मैडम। और तुम्हें क्या हो गया, आज तुम देर से क्यों उठी हो, क्या कोई इंटरव्यू नहीं था क्या, श्रद्धा ने चाहत के पास आकर पूछा। चाहत ने इशारे से इस बारे में बात करने से मना कर दिया। चाहत नहीं चाहती थी कि उसे जॉब ना मिलने के बाद निशा या पार्वती को पता चले। बात को संभालते हुए श्रद्धा ने अपने सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, हे भगवान, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया कि आज शाम वाली पार्टी में तुम्हें सर्व करने जाना है और बॉस ने खुद ही तुम्हें देर से आने को कहा था। रात को आने में भी देर हो जाएगी, इसीलिए उसने तुम्हें देर तक सोने के लिए बोला था। आई होप तुमने अपनी नींद पूरी कर ली होगी। चाहत ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो श्रद्धा की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बड़बड़ाकर बोली, कम से कम कोई ढंग का बहाना तो बता देती, अब पूरी रात क्या तेरे घर पर धरना देकर बैठूंगी। जवाब में श्रद्धा ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। निशा का पूरा ध्यान कुकिंग में था। वो उन दोनों की तरफ पलटी और कहा, पता नहीं पूरे दिन दोनों क्या बातें करती रहती हो, जब देखो दोनों की खुसुरफुसुर जारी ही रहती है। खाना लगभग बनकर तैयार है, चाहत तुम पहले नहा कराओ, फिर बाद में ही कुछ खाना। चाहत ने उनकी बात पर हामी भरी और नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर उनके पास आ गई। भले ही चाहत के घर में पैसों की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके घर के लोगों का नेचर बहुत अच्छा था। श्रद्धा थोड़ी ही देर के लिए वहां आती थी, लेकिन उसे अपने घर से ज्यादा अपनापन वहां पर महसूस होता था। वो चारों लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, जो उन्हें किसी बड़े घर की डाइनिंग टेबल से ज्यादा सुकून दे रहा था। श्रद्धा ने खाते हुए कहा, वाह आंटी, आपके हाथ के बने खाने का कोई जवाब नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ इस इडियट को भी सिखा देती तो मेरे काम आ जाती। एक्सक्यूज मी, बोल भी कौन रहा है जिसे पानी गर्म करना तक ठीक से नहीं आता। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि मुझे कुकिंग करनी आती है, बस टाइम नहीं मिलता, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बना पाती। चाहत ने मुंह बनाकर कहा। उसे कुकिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए कम एज में ही उसने निशा से खाना बनाना सीख लिया था। मेरी चाहत को सब कुछ करना आता है, पर ना जाने क्यों वो हर काम में गड़बड़ कर देती है। पार्वती जी चाहत की तरफ देखकर बोली, जिस पर निशा और श्रद्धा हंस पड़ी। चाहत मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देख रही थी। ये सच था कि चाहत को हर काम करना आता था, पर कहीं ना कहीं चाहत गड़बड़ कर ही देती थी और यही वजह थी कि वो एक नौकरी पर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती थी। खाना होने के बाद चाहत श्रद्धा के साथ बाहर चली गई। आयुष ओबेरॉय के आने की खुशी में विजय ओबेरॉय ने जो वेलकम पार्टी रखी थी वो किसी होटल में होने के बजाय उन्होंने अपने घर पर ही होस्ट की थी। आखिर उनका घर भी मुंबई के सबसे खूबसूरत घरों में से एक माना जाता था, एक हेरिटेज हवेली जिसे खरीदने के लिए लोग बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए तैयार थे। शाम के लगभग 6 बज रहे थे और पार्टी काफी जोरों पर थी। आहान अब तक पार्टी में नहीं आया था, उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी मॉम को किए प्रॉमिस की वजह से उसे पार्टी में आना पड़ रहा था। आहान अपने घर पर पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। उसके साथ उसकी फ्रेंड तनु भी थी जो पार्टी में जा रही थी। तनु ने पार्टी के लिए ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था और अपने बालों को पोनीटेल के रूप में स्टाइल कर रखा था। वहीं आहान ने भी ब्लैक कस्टम मेड सूट पहना था। आहान को देखकर तनु ने सिर हिलाकर कहा, कौन कह सकता है इतने हैंडसम बंदे को एंगर डिसऑर्डर है। कोई बात नहीं दोस्त, मुझ पर यकीन रखो, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ठीक कर ही दूंगी।
मुझे मेरी बीमारी का इलाज मिल गया है तनु, बस वो मेरे पास आ जाए, फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आहान ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। उसकी बात सुनकर तनु ने उसकी तरफ मुंह बनाया और ड्रामेटिक वे में कहा, अच्छा कौन है वो लड़की जो मुझसे मेरा काम छीनने पर तुली है? कितनी बेदर्द लड़की है जो मेरे पेट पर लात मार रही है? मेरा क्या होगा? क्या तुमने किसी दूसरी कंट्री से साइक्राइटिस्ट बुलाई है? वो कोई साइक्राइटिस्ट नहीं है, शी इज माई डॉल। ना जाने क्या पॉजिटिव वाइब्स है उस लड़की की कि उसके पास आते ही मेरा गुस्सा हवा में छू हो जाता है। आई विश कि मैं तुम्हें लाइव डेमो दे पाता, आहान ने चाहत के बारे में बताया। क्या बात है डॉल एंड ऑल, लगता है तुम्हारी डॉल इस गुड्डे का दिल चुराने लगी है। अगर वो लड़की तुम्हारे काम की है तो तुम उसे अपने पास क्यों नहीं ले आते? तुम जो फीस मुझे पे करते हो उतने पैसों में कोई भी लड़की तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए काम आ सकती है, तनु ने एडवाइस दी। हालांकि आहान उसे एक मोटी फीस पे करता था, लेकिन दोस्त होने के नाते वो चाहती थी कि आहान जल्द से जल्द अपने गुस्से पर काबू पा ले। आहान ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर मायूसी से कहा, मैंने कहा ना मेरी डॉल सबसे अलग है, उसे पैसों का बिल्कुल लालच नहीं, बस यही वजह है कि मैं उसे अपने पास नहीं ला पा रहा। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसे मेरे पास आना ही होगा, बोलते हुए आहान की आवाज में काफी कॉन्फिडेंस था। ठीक है ले आना, लेकिन फिलहाल पार्टी में चलते हैं। मुझे पता है तुम अपनी शक्ल दिखाकर वहां से वापस लौट आओगे, लेकिन मुझे पार्टी एंजॉय करनी है। सुना है तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है, तुम्हारी प्रॉब्लम को जानते हुए कभी मैंने तुम्हें पटाने के बारे में सोचा भी नहीं, तो क्यों ना तुम्हारे भाई को पटा लूं और तुम्हारी भाभी बन जाऊं, तनु ने भौहें उठाकर कहा, जिस पर आहान ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। तनु और आहान वहां से पार्टी के लिए निकल चुके थे, वहीं एक सरप्राइज आहान के लिए आगे तैयार खड़ा था।
आहान जैसे ही पार्टी में पहुंचा, मीडिया वाले उसे घेरने लगे। आहान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन सबको हटाया और उसे अंदर लेकर गए। पार्टी में भी सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आहान ओबेरॉय ही था। जैसे ही आहान अंदर गया, सामने देखते ही गुस्से से उसकी आंखें सर्द हो गई थीं और उसने अपनी उंगलियों पर बैक काउंटिंग शुरू कर दी।